ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये बात रविवार 30 जून 2024 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस, स्वर्णपथ, भजन संहिता। और वो अपने वचन के द्वारा उनको ठीक करता और जिस घड़े में वो पड़े हैं उससे उन्हें निकालता है। उत्तरदायी अध्ययन यर्मिया, यशाया। इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट और दुख अपरध है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना बरहम है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को ठीक करूँगा, यहोवा की ये वाणी है। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा सिथर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुदई होकर तुझसे नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धार्मिक ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। पाठ उपदेश बाइबल में से गलतियों। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से सुना था वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समंदर और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे, और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, और ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वो छोटी पुस्तक स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझे ये कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदिमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। क्योंकि जो शरीर से जमा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के निकट एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। जो कुछ उसने देखा और सुना है, उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना फिसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यूहन्ना तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या तू प्रीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरुण इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। यूहन्ना और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तसलिंकियों इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। भजन संहिता। हे यहोवा, तू धन्य है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यशाया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जुबान दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरुण अपना माथा चमका के नियन काढ़ा किया। यर्मिया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वर्ष 1866 में मैंने क्रिश्चियन साइंस या जीवन सत्य और प्रेम के दिव्य नियमों की खोज की और अपनी खोज का नाम क्रिश्चियन साइंस रखा। वैज्ञानिक मानसिक उपचार के पूर्ण सिद्धांत के इस अंतम रहस्य उद्घाटन के स्वागत के लिए भगवान ने कई वर्षों के दौरान मुझे विनम्रता पूर्वक तैयार किया। इसकी एक आध्यात्मिक उत्पत्ति है और एक सामग्री नहीं है, ये एक दिव्य उच्चारण है, दिलासा देने वाला, जो सभी सत्य का निरंतरित्व करता है। क्रिश्चियन साइंस शब्द का प्रयोग लेखक द्वारा दिव्य उपचार की वैज्ञानिक प्रणाली को नामित करने के लिए किया गया था। इस रहस्य उद्घाटन में दो भाग शामिल हैं। एक, मन चिकित्सा के इस दिव्य विज्ञान की खोज, शास्त्रों की आध्यात्मिक समझ, सांत्वनादाता की शिक्षाओं के माध्यम से, जैसा कि गुरु ने वादा किया था। दो, वर्तमान प्रदर्शन से ये सिद्ध होता है कि यीशु के तथाकथित चमत्कार विशेष रूप से किसी ऐसे युग से संबंधित नहीं थे जो अब समाप्त हो चुके हैं, बल्कि वो एक सदैव क्रियाशील ईश्वरीय सिद्धांत को दर्शाते हैं। इस सिद्धांत का संचालन वैज्ञानिक व्यवस्था की शाश्वतता और अस्तित्व की निरंतरता को इंगित करता है। एक मसीही वैज्ञानिक को अपनी पाठ्य पुस्तक के लिए मेरे काम विज्ञान और स्वास्थ्य की आवश्यकता है और उसके सभी छात्रों और रोगियों को भी इसकी आवश्यकता है। क्यों? पहला, क्योंकि ये इस युग के लिए सत्य की आवाज़ है और इसमें क्रिश्चियन साइंस या मन के माध्यम से उपचार के विज्ञान का पूर्ण विवरण निहित है। दूसरा, क्योंकि ये पहली ज्ञात पुस्तक थी जिसमें क्रिश्चियन साइंस का विस्तृत विवरण था, इसलिए इसने इस विज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए प्रथम नियम दिए तथा मानवीय परिकल्पनाओं से उद्दुष्ट प्रकट सत्य को पंजीरित किया। अनेक कार्यों ने बिना इसका श्रेय दिए इस पुस्तक से उधार लिया है तथा विज्ञान में मिलावट की है। तीसरा, क्योंकि इस पुस्तक ने शिक्षक और विद्यार्थी, चिकित्सक और रोगी के लिए अन्य पुस्तकों की तुलना में अधिक कार्य किया है। यद्यपि इस खंड में मन को ठीक करने का संपूर्ण विज्ञान समाहित है, फिर भी कभी भी विश्वास न करें कि आप इस पुस्तक के एक साधारण अध्ययन से विज्ञान के पूरे अर्थ को आत्मसात कर सकते हैं। पुस्तक का अध्ययन करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक उपचार के नियमों का प्रदर्शन आपको क्रिश्चियन साइंस के आध्यात्मिक आधार पर मजबूती से स्थापित करेगा। ये प्रमाण आपको पहले से ही प्राचीन सिद्धांतों के नष्ट होने वाले जीव आश्रमों से ऊपर उठाता है और आपको अब तक अप्राप्य और प्रतीत होने वाले मांद आध्यात्मिक तत्वों को समझने में सक्षम बनाता है। विचारकों का समय आ गया है। दिव्य विज्ञान नई शराब को पुरानी बोतलों में नहीं डालता है, आत्मा को सामग्री में, ना ही अनंत में। जब हम आत्मा के तत्वों को समझ लेते हैं तो भौतिक वस्तुओं के बारे में हमारे झूठे विचार नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता को खत्म किया जाना चाहिए या नया विचार फैलाया जाएगा और पुराना, जो हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए है, खो जाएगा। अब पुराने समय की तरह सत्य बुराइयों को दूर करता है और बीमारों को ठीक करता है। भौतिक विचार के लिए सब कुछ भौतिक है जब तक कि आत्मा द्वारा इस तरह के विचार को ठीक नहीं किया जाता है। बीमारी ना तो काल्पनिक है और ना ही अवास्तविक, यानी रोगी की भयभीत झूठी भावना के लिए बीमारी कल्पना से कहीं अधिक है। ये दृढ़ विश्वास है, इसलिए इसे अस्तित्व के सत्य की सही समझ के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। यदि क्रिश्चियन चिकित्सा पद्धति का दुरुपयोग विज्ञान के मात्र ज्ञानी लोगों द्वारा किया जाता है तो ये एक कष्टकारी उपद्रव बन जाता है। वैज्ञानिक रूप से इलाज करने की बजाय ये हर अपंग और विकलांग व्यक्ति पर एक टुच गोलाबारी शुरू कर देता है और उन्हें इस सतही और ठंडे दावे के साथ पीटता है, आपको कोई बीमारी नहीं है। चाहे द्वेष या अज्ञानता से परवृत्त होकर एक झूठा अभ्यासी दुष्टता करेगा और अज्ञानता जानबूझकर की गई दुष्टता से अधिक हानिकारक है। जब दुष्टता पर अविश्वास किया जाता है और उसे उसके प्रारंभ में ही विफल कर दिया जाता है। आपका फल यह साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक चिंतन की दबी हुई आवाज महाद्वीप और महासागर से लेकर जगत के अनंत तक पहुंचती है। सत्य की ईश्वरीय आवाज मानव मन के लिए है। जब एक शेर धारता है, ये रेगिस्तान में और भय के अंधेर स्थानों में सुनाई देता है। ये बुराई की सात आवाजें पैदा करता है और गुप्त अव्यवस्थाओं पर द्यापाशन उच्चारण करने के लिए उनकी अव्यक्त ताकतों को रोकता है। तब सत्य की शक्ति प्रदर्शित होती है और त्रुटि के विनाश में प्रकट की जाती है। फिर सिद्ध भाव वरने से एक आवाज आती है, जा और छोटी पुस्तक ले, उसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। नश्वर स्वर्गीय सुसमाचार का पालन करते हैं, दिव्य विज्ञान को लें। इस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ें, इसका ध्यान करें, इसका पालन करें। ये वास्तव में पहले स्वाद में मीठी होगी जब ये आपको ठीक करती है, लेकिन अगर आपको इसका पाचन कड़वा लगता है तो इस पर बुड़बुड़ाना नहीं। जब आप इस तत्व के और अधिक निकट पहुंचते हैं, जब आप इस तत्व के दिव्य शरीर का सेवन करते हैं, इस प्रकार सत्य और प्रेम की प्रकृति या मूल तत्वों का हिस्सा बनते हैं, तो आश्चर्य चकित ना हो और ना ही असंतुष्ट हो, क्योंकि आपको हिमालोक प्याला साझा करना होगा और कड़वी जड़ी बूटियां खाना होंगी। क्योंकि प्राचीन समय में पाश्का भोज में इसराइलियों ने इस प्रकार दास्ता से मुक्त होकर विश्वास और आशा के एल्डोराडो में जाने के इस खतरनाक मार्ग की पूर्व कल्पना की थी। इस पुस्तक विज्ञान और स्वस्थ में निहित विज्ञान मुझे किसी मानव कलम या जुबान से नहीं सिखाया, और ना तो जुबान और ना कलम उसे उलट सकती है। ये पुस्तक उथली आलोचना या लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण छात्रों द्वारा विकृत हो सकती है और इसके विचारों का अस्थायी रूप से दुरुपयोग और गलत प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसमें निहित विज्ञान और सत्य हमेशा परखने और प्रदर्शित करने के लिए रहेगा। संत यूहन्ना के शब्दों में, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस सहायक को मैं क्रिश्चियन साइंस समझता हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में, इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।